शांति, पीस, जून 2025, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं। इसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिससे आप जुड़ सकते हैं। ये लिंक गूगल मीट और यूट्यूब लाइव का दोनों लिंक चारों समय और रोजाना एक ही रहते हैं। आप किसी भी लिंक से जुड़ सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। और यदि आपको जुड़ने में कोई दिक्कत आ रही है तो सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का साथ मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं, बाबा आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं बाबा? बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। बाबा आए हैं तुम्हें ज्ञान से खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें काटा नहीं बनना, कांटों को इस सभा में नहीं लाना, खुद काटा नहीं बनना और दूसरा कांटे को इस सभा में नहीं लेके आना। क्या कहना चाह रहा है बाबा हमें? सेरे सेरे कांटे फूल कहां से उठा के लाया ये हमारा बागवान बाबा? कांटा कहते हैं दुख देने वाले को, और हमने दुख देने वाला नहीं बनना, हमने किसी को दुख नहीं देना। ये बात हमें अपनी बुद्धि के अंदर धारण करना है। कांटे का मतलब है कोई ना कोई विकार है, और कोई भी विकार हमारे में नहीं होना चाहिए, और जो भी विकारी व्यक्ति है उसको भी माउंट आबू में नहीं लेके आना चाहिए। ये दो बातें हमारे लिए हैं कि कांटा बनना नहीं, कांटों को माउंट आबू में मधुबन में बाबा के घर में लाना नहीं। प्रश्न, जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं, याद की यात्रा में मेहनत करते हैं, याद की यात्रा में क्या मेहनत करनी होती है?
याद की यात्रा में बाबा की किस्मत में निरंतर सुधार लाना है।
हाँ, याद की यात्रा का मतलब है मुझे निरंतर अपने में सुधार देखना है, दिखाई देना चाहिए, ना केवल मुझे, मेरे संबंध संपर्क में आने वाली हर आत्मा को भी मेरा सुधार अनुभव हो। और इसी में ही हमें सारा दिन लगा रहना है, 24 घंटे हमारे को यही देखना है कि हर पल के अगले पल में मेरे में इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना, मेरे में इम्प्रूवमेंट हो रहा है ना, कोई इम्प्रूवमेंट में कमी तो नहीं आ रही, किसी भी प्रकार से इम्प्रूवमेंट में कमी तो नहीं आ रही। ये बात हमको अपने में देखनी, क्योंकि यदि कहीं भी इम्प्रूवमेंट में कमी आ रही है तो मुझे उसे चेक करना और चेंज करना, ये मेहनत। यदि मैं इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, मैं इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहा हूं तो क्या हो रहा है,
यात्रा में नहीं है
और गिरावट हो रही है। याद रखना है, हम यदि बढ़ नहीं रहे तो रुक नहीं सकते, या तो आगे बढ़ेंगे या पीछे बढ़ेंगे। चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, यदि मैं अपनी उन्नति नहीं कर रहा हूं तो मैं अवनति की तरफ जा रहा हूं, रुक नहीं सकते, आप या तो बढ़ोगे या नीचे गिरोगे। ग्राफ जो है हमारा, हाँ जी, बिल्कुल, वो तो है ही। पहला काम है अपनी कमियों को पहचानना, और वो भी पहचानने के लिए भी बाबा ने अपनी सारी श्रीमत दी है। यदि हम बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं तो हम कमी को पहचान रहे हैं और उसको दूर कर रहे हैं, और यदि हमने बाबा की श्रीमत को छोड़कर किसी भी मनुष्य की मत पर चलना शुरू कर दिया है तो हम अवनति की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि दो में से किसी मत पर तो चलेंगे, या तो बाबा की श्री मत पर चलेंगे या मन मत पर मत पर चलेंगे। मन मत का भी मतलब है देहधारी मनुष्य की मत, और पर मत का भी मतलब है देहधारी मनुष्य की, क्योंकि दो ही हिस्से, या तो हम किसी देहधारी मनुष्य की मत पर चल रहे होंगे या परमात्मा की मत पर चल रहे होंगे। अब हम परमात्मा की श्री मत पर चल रहे हैं तो नेचुरल हम अपने में सुधार कर रहे हैं, और यदि हम मन मत पर चल रहे हैं तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। मतलब दो बातें, रुक नहीं सकते, यही मेहनत है कि हम नीचे की तरफ नहीं जाएं, हम चढ़ती कला में रहें, हर समय हम चढ़ती कला में। उत्तर, याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। उनकी निशानी क्या होगी, कि जो याद में रहते हैं, जिनको हमेशा चढ़ती कला हो रही है, जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनके अंदर खुशी होगी, बहुत खुशी में रहेंगे, बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं, फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। हमें कहाँ जाना है, हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो, खुद भी बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। ओम शांत। बागवान भी बैठा है, माली भी है, फूल भी है, वे नई बात। बागवान भी बैठा है, माली भी है, फूल भी है, ये नई बात। मतलब बागवान कौन है, शिव बाबा, माली कौन है, ब्रह्मा बाबा, और फूल कौन है, हम सब। बाबा है बागवान, माली है ब्रह्मा बाबा, फूल भी है, फूल है हम सब बच्चे। और जो बच्चा माली बनना चाहता है वो माली बन सकता है, फूल बन के फिर माली बन सकता है। माली का काम होता है बाबा से बागवान का कहना मानकर औरों की सेवा करना, जो औरों की सेवा करते हैं वो नेचुरल माली बन जाते हैं, जो सेवा लेते हैं और सुधरते हैं वो फूल है। ये बात स्पष्ट हो गया, तीन शब्द तीन लाइनें बाबा ने इकट्ठी प्रयोग किए हैं, बागवान भी बैठा है, बागवान है शिव बाबा जो पूरे बगीचे का मालिक है, माली भी है ब्रह्मा बाबा जो बाबा के डायरेक्शन अनुसार सबको सुधारने पर लगा है, और वो भी सारे माली हैं जो स्वयं को सुधार कर औरों को भी कांटे से फूल बनाने में लगे हुए हैं, मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वो सारे हो गए माली। और जो पालना ले रहे हैं वो है सारे फूल, क्योंकि वो खिल रहे हैं। अब खिलेंगे तो उसके बाद वो सोचेंगे कि हमें भी सेवा करनी चाहिए, और जो सेवा नहीं कर रहे हैं वो हम समझ ले कि अभी हम सेवा ले रहे हैं, या तो हम सुधर रहे हैं ठीक है कि नहीं, और या हम गिर रहे हैं। और यहाँ पर हमें जो बात समझने में आ रही है, या तो हम फूल बन रहे हैं, सेवा ले रहे हैं, और जब हम फूल बन जाएंगे, हम औरों की सेवा करने वाले बन जाएंगे, तो हम माली में, माली की कैटेगरी में आ जाएंगे, और बागवान है सेवा। ये नई बात है, ये नई बात है ना, कोई नया अगर सुने तो कहेंगे ये क्या कहते हैं, पता ही नहीं क्या कह रहे हैं, ना इनके पास की जमीन है, ना इनके पास कोई खेत है, ना इनके पास कोई फल है, ना इनके पास कोई फूल है, ना कोई बीज है, पता नहीं कैसी अजीब आदमी है, बागवान भी बैठा है, माली भी बैठे हैं और फूल भी बैठे। ये तो सारी कहानी आत्माओं पर है, वो तो समझ ही नहीं सकते ना, वो तो देह की नजर से देखने वाले वो कहेंगे क्या बोलते हैं, पता ही नहीं, समझ में नहीं आती इनकी बात। कोई नया अगर सुने तो कहेंगे ये क्या कहते हैं, बागवान फूल आदि ये क्या है, ऐसी बातें तो कभी किसी शास्त्र में हमने सुनी नहीं है, ये जैसी बातें सुनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, याद भी करते हैं बागवान शिवैया को, बागवान के साथ शब्द जोड़ दिया है शिवैया, बागवान बगीचे का मालिक, शिवैया जो हमारी नैया को पार ले जाए। और यहाँ यदि नैया की बात भी आए तो नैया किसे कहते हैं, बताओ, या नैया भी आत्मा को कहते हैं, आत्मा नाव में बैठी है क्या, आत्मा खुद नाव है, बताओ ऐसे होता है कोई, नाव अलग होती है, नाव को चलाने वाला अलग होता है। अब हम एक बात अच्छी तरह से, पहले दिन हमें बताया गया कि शरीर है रथ, आत्मा है रथी, तो शरीर है नाव चलाने वाली ना, आत्मा होगी ना, नाव को चलाने वाली आत्मा होगी ना, तो यहाँ तो नाव ही जो है ना ऐसी बना दी है जहाँ पे बैठ भी ना सकते, क्या परमात्मा आत्मा में बैठ सकता है जो उसको चला के ले जाएगा, पता नहीं कैसी नाव बनाई है। चलो वैसे कहे, हमें तो बाबा की बात, हाँ जी,
आत्मा श्रीमत की नाव में बैठी हुई है,
आत्मा श्रीमत की नाव में बैठी है, बताओ बाबा के पास श्रीमत है और आत्मा जाके श्रीमत की नाव पर बैठती है, ठीक है, फिर उसको चलाने वाला बाबा है, बाबा खुद श्रीमत है, बाबा खुद जो है नाव भी है, तो हम आत्मा भी जब बाबा की श्रीमत को अपने में धारण करते हैं तो हम उस श्रीमत की नाव में बैठ कर जाते हैं। बाबा की श्रीमत कंप्लीट है, उसमें से जितना हमने ज्ञान लिया, जितना हमने श्रीमत को अपने जीवन में धारण किया, तो हम उसके आधार पर अपनी नैया को पार करते हैं। नैया पार करने की सारी मेहनत हमको करनी है, बाबा ने तो सारा ज्ञान का खजाना ला के रख दिया, अब हम उसमें से कितना ज्ञान लेते हैं उतनी अच्छी तरह हम अपनी नाव को चला कर ले जाएंगे, ज्ञान के आधार पर हमको आगे जाना है और अज्ञानता से बाहर निकलना है। ज्ञान जो है आकर के हमें अज्ञानता के गड्ढे से बाहर निकलने में, अंधेरे से बाहर निकलने में मदद करता है, और ये ज्ञान की जो श्रीमत है या जो ये ज्ञान है, यही बाबा की अंगुली है, यही बाबा की अंगुली है जिसको पकड़कर हम बाहर जाते हैं, जिसको पकड़कर हम बाहर निकलते हैं। सारी पकड़ने की मेहनत भी हमको करनी है, ज्ञान भंडार भी अपने में भरने की मेहनत करनी है, अंधेरे को निकालने की मेहनत भी हमें करनी है। अब वो बागवान है, वो उसकी वजह बागवान है, वो आकर के मालियों को देता है ज्ञान का खजाना, जिस ज्ञान के खजाने से माली सब फूलों को क्या करते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। ऐसा दुनिया में कोई बगीचा नहीं होगा जहां कांटे से फूल बनाया जाता है। कोई बीज नहीं है, मतलब बीज कौन है, आत्मा। वो आत्मा क्या बन गई है, कांटा दुख देने वाली, उस आत्मा को फूल बनाना है, सुख देने वाला बनाना। क्योंकि हमारी जो पढ़ाई है वो बिल्कुल अलग, एक एक बात को बाबा बैठकर हमें समझाते हैं, इतना अच्छी तरह समझाते हैं कि बस हम दीवाने हो गए हैं, हम सिवाय बाबा की मुरली को सुनने पढ़ने के और हमें कुछ अच्छा अब लगता ही नहीं। अब यहाँ आए हैं सवेरे सवेरे उठ करके यहाँ से पार ले जाना, यहाँ से ही हमको जितना हमें समझ में आ गया है अब उसके अंदर हमने ज्ञान की पालना अपने में भरनी है और भरने की मेहनत हमें हर एक को खुद को करनी है। बाबा कोई मेहनत नहीं करता, बाबा आके सारा ज्ञान का खजाना रख देता है, दे देता है। पढ़ो भी आपे, सुनो भी आपे, पढ़ो भी आपे, सुनो भी आपे, उसको अपने जीवन में धारण करना है, वो भी मेहनत आप खुद करो। बताओ आके रख दिया खजाना, ले लो जितना चाहिए ले लो, लूट सकते तो लूट ले, अंत समय पछताएगा। तो ये भी हमारा श्रेष्ठ भाग्य है कि हमको ये मुरली पढ़ने के लिए, मंथन करने के लिए, सुनने सुनाने के लिए अवसर मिल गया। बाप कहते हैं याद की यात्रा पर रहना, बाबा कहते हैं क्या करना है, हमको याद की यात्रा पर रहना है। अपने को आपे ही देखो हम कितनी दूर जा रहे हैं। कितनी दूर जाने का मतलब क्या होगा, कितनी दूर जाने का मतलब क्या होगा, हाँ जी, जहां दूर का मतलब है ऊंचाई, दूर का मतलब है ऊंचाई। जहां अब हमने दूर का मतलब समझना है, कितना ऊंचाई पर जा रहे हैं, कितना श्रेष्ठ बनते जा रहे हैं। हाँ, तो दुख धाम से कितना दूर सुख धाम की तरफ जा रहे हैं। याद की यात्रा पर रहना, याद की यात्रा का मतलब है प्रोग्रेस पर रहना। हमारी प्रोग्रेस कंटिन्यू होनी चाहिए। अपने को आपे ही देखो हम कितनी दूर जा रहे हैं, कितना अपनी सत्व प्रधान अवस्था तक पहुंचे, मतलब तमो प्रधान से कितना दूर सत्व प्रधान अवस्था तक पहुंचे हैं। जितना सत्व प्रधान अवस्था तक पहुंचेंगे होती जाएगी तो समझेंगे अभी हम लौट रहे हैं। कहां लौट रहे हैं, जितनी हम तत्व प्रधान अवस्था तक पहुंचेंगे, जितनी अवस्था ऊंची होती जाएगी तो समझेंगे अभी हम लौट रहे हैं। कहां लौट रहे हैं, कहां तक हम पहुंचे हैं, सारा मदार याद की यात्रा पर। कितना हम अपने में सुधार कर रहे हैं इसको देखना है, इस पर सारा मदार। और जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे खुशी भी चढ़ी रहेगी, क्योंकि जितना मिल गया खुशी खत्म हो जाती है, कुछ आगे मिलेगा तो खुशी बढ़ेगी। यदि हम रुक गए तो खुशी नहीं मिलेगी, गिरेंगे तो दुख मिलेगा ही मिलेगा, और चढ़ते रहेंगे तो हमारी खुशी बढ़ती रहेगी। रुकने पर खुशी गायब होना भी क्या है? दुख। खुशी गायब होना भी दुख है। और उल्टे काम करके तो हम दुखी पाएंगे पाएंगे, परंतु रुक जाना भी दुख है। खुशी भी चली रहेगी। जो जितनी जितनी मेहनत करते जितनी जितनी मेहनत करते हैं उतना उनमें खुशी आएगी। जैसे इम्तिहान के दिन होते हैं तो स्टूडेंट समझ जाते हैं ना, हम कहाँ तक पास होंगे। यहाँ भी ऐसी है, हर एक बच्चा अपने को जानते हैं कि कहाँ तक हम खुशबूदार फूल बने, कहाँ तक हम खुशबूदार फूल बने, कितना खुशबूदार फिर औरों को बनाना है, कितना खुशबूदार हम बने हैं और फिर हमें औरों को बनाना भी है, फिर हमने औरों को भी खुशबूदार फूल बनाना है। ये गाया ही जाता है, जब बन रहे हैं खुशबूदार फूल तो हम फूल हैं, और जब हम खुशबूदार फूल औरों को बनाने लगते हैं तो क्या बन जाते हैं? औरों को खुशबूदार, हाँ जी, माली बन जाते हैं। बागवान बन सकते हैं हम?
बागवान बाबा
हम बन सकते हैं? नहीं दो, बागवान एक है शिव बाबा, बाकी सारे माली हैं। मालियों में भी कैटेगरी होती है, छोटे माली, बड़े माली, और बड़े माली, और बड़े माली, ठीक है, ये कैटेगरीज होती है। हम मालियों में कैटेगरी में जा सकते हैं और परंतु बागवान हम नहीं बन सकते। हाँ जी, अब कोई माली है तो एक आधे को कभी थोड़ी सी बात सुना दी, कभी दूसरे कुतार को सुना दी, कोई है 10-20 को सुना सुधार देता है, 10-20 कांटों को फूल बना देता है, कोई 100 को फूल बनाता है, कोई 1000 को फूल बनाता है, तो प्रमोशन होती जाती है ना। माली तो खैर जैसा होगा, बात यह है कि माली कितना बना रहा है, कितनी कितनों को कांटों से फूल बना रहा है। भाई आप कोई व्यक्ति, कोई आत्मा है, वो 10 आत्माओं को कल्याण करने के निमित्त बन गया, और कोई आत्मा है वो 100 को, कोई 1000 को, कोई 5000 को, तो मतलब जो जितनी ज्यादा आत्माओं को बनाएगा, आप उसमें क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी आती है। एक तो 1000 को तो माली बना, 1000 फूलों को तो उसने पालना दे दी, परंतु बनाए क्या, बनाए कैसे, छोटे छोटे, ज्यादा सुधार वो नहीं कर रहे हैं। और एक ने 10 को बनाया, परंतु वो 10 इतने अच्छे निकले कि वो वारिस बन गए, बाबा के बच्चे बन गए, वो माली ही बन गए, वो फूल के फूल रहे और वो माली बन गए। अब किसी ने 10 मालियों को तैयार कर दिया, किसी ने 10 फूलों को तैयार किया, या 1000 फूलों को तैयार किया, तो कौन किस में आएगा? हर एक अपनी कैटेगरी अपनी योग्यता के आधार पर बनेगी ना। अब आप आगे माली बना रहे हो कि फूल बना रहे हो? जानकी दादी को मुझे याद आती है बात, जानकी दादी को बाबा एक जगह पर थोड़ा समय ही रखता था, जैसे ही 15-20 दिन महीने में वो सेंटर चला, दादी ने कहा चल छोड़ कर, कहते अभी इनको, इनकी चिंता तू मत कर, इनकी चिंता तू मत कर, बस छोड़ इनको, ये अपना आप संभालेंगे, ये प्रजा तेरी, ये राजा बनाएंगे, ये राजा बनेंगे और तो तुम ये प्रजा बनाएंगे, तुमने तो राजा बनाना। और दादी जानकी का काम वंडरफुल रहा पूरे पूरे उनके जीवन काल में, कि वो जिस भी देश में गए वहां जाके बस माली तैयार किए, ऐसी पालना दे दी, माली तैयार किए, प्रजा तो वो बनाएंगे। समझ में आई ये बात? मतलब हर एक की अपनी अपनी योग्यता है ना। उसने इतने राजा तैयार कर दिए, जितने सेंटरों के मालिक तैयार कर दिए, वो सारे राजा बन गए ना। इंडिया में पहले जहाँ भी जाती थी दादी बस महीना दो महीना डेढ़ रुकना तो चल दूसरी जगह जा, और उसको कभी भी वहां नहीं रुकने दिया। और उसने भी सीख लिया कि ये भी दादी जानकी ने बड़ा अच्छी तरह सुनाया कि मैं कभी भी उस सेंटर से सुई भी नहीं लेके जाती थी। तो जैसे होता है ना कि यहाँ ये स्पीकर अच्छा है माइक अच्छा है तो ये मैं वहां ले जाऊं, नहीं वहां जाके और ही लेंगे। मतलब दादी जानकी जब लंदन में फर्स्ट टाइम गई तो उस दिन उन्होंने वहीं पर जाकर के चार कुर्सियां खरीदी और कमरे में रख दिया, बस सोना तो नीचे है। मतलब यहीं से शुरुआत की, मतलब बाकी धीरे 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 अपने आप वहां पर क्वीन एलिजाबेथ का जो महल है, महारानी का जो महल है, वो 99 इयर्स के लीज पर उसका कुछ हिस्सा मिल गया। कहां चार कुर्सियों के साथ वहां रहे शुरुआत किया और कहां आज इतना बड़ा महल का हिस्सा लीज पर मिला है जिस पर जो है ना सेंटर चलता है। तो मतलब कहने का यह है कि हमें बहुत अच्छी तरह से समझना कि बाबा क्या क्या कराता है और दादियों ने क्या किया। दादी ने माली तैयार की, ब्रह्मा बाबा ने माली तैयार की, उनकी जो 14 साल की बच्ची थी वो इतने पक्के माली तैयार किए कि जो एकदम पूरे वर्ल्ड के अंदर आगे कितने मालियों को तैयार किया। उन्होंने अपनी क्वालिटी को अपने आप देखिए कि आपने पहले माली बनना है। फूल तो बन ही रहे हैं, फूल के साथ साथ हमें माली बनना है। हमने हर बात हर एक को बहुत अच्छी तरह से समझानी, बस इतना ही सा काम है। आप समझाना सीख गए तो आप सारे माली बनेंगे, और यदि आप फूल बने रहे तो आप रुके रहेंगे। ये हर एक आत्मा की अपनी क्वालिटी है, तो क्या बनना है, मतलब रुकना नहीं है, आपने चलते रहना है, आपने मालियों को तैयार करना, माली बनाओ आगे वो करेंगे। अब आपने जिसने सोचो के 10 माली बना दिए, वो 10 माली आगे कितने कांटों को फूल बनाएंगे। और यदि आप खुद लगे रहोगे कांटे को फूल बनाने में, अकेले लगे रहोगे तो आप कितनों को कांटों से फूल बनाओगे। ठीक है, इसलिए अपने आप को पहचानो और अपने आप को माली बनाओ। फूल नहीं, फूल तो बनना ही बनना, खाली फूल नहीं, हमें पालना लेने वाला नहीं बनना, पालना लेनी है, सिर्फ पालना लेने वाला नहीं बनना। उसके साथ हमें बाबा ने अवसर दिया है कि आप जितना सीखते हो उतना आगे सिखाते हो, बस अब कितना आप आगे सिखाएंगे वो आपका अपना पार्ट। वो है फूलों का बगीचा। फूलों का बगीचा क्या है, वो है दुनिया, कलयुग है कांटों का जंगल और सतयुग है फूलों का बगीचा। मुसलमान लोग भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह, खुदा का बगीचा, समझते हैं वहां एक बगीचा है। वो क्या समझते हैं, जहां भगवान रहता है वहां एक बगीचा है, परंतु उन्हें ये नहीं पता वहां बगीचे में परम धाम के अंदर वहां कोई बगीचा बगीचा नहीं है, वहां कोई पालना नहीं होती है, वहां कोई पढ़ाई नहीं होती है। गार्डन ऑफ अल्लाह यहाँ है, इसी धरती पर है। खुदा आकर के, खुद आकर के यहाँ वो इस नर्क को, इस कांटों के जंगल को वो क्या बनाते हैं, फूलों का बगीचा बनाते हैं। बाबा आकर यहाँ फूलों का बगीचा बनाते हैं, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। वहां जो आता जाता है उनको खुदा फूल देते हैं। वो कहते हैं कि जो उनके कुरान के हिसाब से वो कहते हैं कि जो खुदा के बगीचे में जाता है तो खुदा उनको फूल देता है। अब वो बेचारे कहते हैं फूल देता है, ये नहीं समझते कि खुदा उनको कांटे से फूल बना देता है। मन में जो कामना होती है, आप जो इच्छा लेकर जाते हो, खुदा वो पूरी करता है। क्योंकि भक्ति मार्ग के हिसाब से जैसे हमारे मंदिरों में कहा गया कि आप मंदिर में जाएंगे तो भगवान आपकी इच्छा पूरी करेगा। ऐसे ही वो समझते हैं कि आप जब जन्नत में जाएंगे तो खुदा आपको फूल देगा। जन्नत में आप जाएंगे तो आपको क्या करेगा, कांटे से फूल बनाएगा, कांटे से फूल बनाएगा। वो ये नहीं कहते, वो कहते फूल बनाएगा और वो तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर देगा। अब उन्होंने उसी हिसाब से अपने आप को समझ रखा है कि हम भगवान को याद करें, भगवान के नाम को याद करें और अल्लाह के नाम पर सारे काम करें, अल्लाह पर विश्वास करें कि जो भी करेगा इंशाअल्लाह भगवान की इच्छा से जो भी होगा वही भगवान की इच्छा है। कुछ भी हो रहा है उसको भगवान की इच्छा समझो। कोई तुम्हारी गर्दन काट रहा है, समझ लो कि भगवान की इच्छा है वो मेरी गर्दन काटे। दुख मिल रहा है तो समझ लेना है बाबा की इच्छा, गॉड की इच्छा, खुदा की इच्छा। इस संसार में जो कुछ भी होता है वो खुदा की इच्छा से होता है। मतलब कहने का भाव ये है कि वो अपने आप को उसी प्रकार से समझ करते हैं जैसे भक्ति मार्ग में दूसरे भी करते हैं। बाकी ऐसे तो कोई नहीं, कोई फूल उठाकर देते हैं, बाबा तो कोई ऐसा फूल उठाकर देते नहीं है। फूल किसको देंगे, बाबा का काम आत्मा का, आत्मा से है। आत्मा क्या करेगी, कैसे पकड़ेगी फूल, कहाँ रखेगी फूल। फूल उठाकर देते हैं जैसे जिसकी बुद्धि में है वो साक्षात्कार हो जाता है। जहां साक्षात पर कुछ भी नहीं, ध्यान से देखो कैसे लाइन को बदलता है बाबा, जैसा जिसकी बुद्धि में है वे साक्षात्कार हो जाता है। ये लाइन समझ में आ गई है, जिसकी रही भावना जैसी तीन मूर्त देखी देखी। भक्ति में कहते हैं जिनकी जो भावना रहती है, जिनकी बुद्धि में जो रहता है उनका वह साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ साक्षात पर कुछ, यहाँ साक्षात पर, साक्षात्कार पर कुछ भी नहीं। क्या समझ में आया, ब्रह्मा कुमारी में साक्षात्कार पर कुछ भी नहीं है। वे साक्षात्कार उनको होता है जो भक्ति मार्ग वाले ना, भक्ति हाँ मतलब बाबा कितना लेकिन क्लियर क्लियर करते हैं बाबा हर बात को, तो हम उसको ध्यान दे तो वे साक्षात्कार हो जाता है जैसा जिसकी बुद्धि में होता है। यही बात हम सुनते आए, कहते थे जिनकी भावना रही जैसी तीन मूर्त देखी देखी। तो जिनकी भावना जैसी थी वो मूर्त देख ली उन्होंने, परंतु वो कोई साक्षात्कार नहीं है। और यहाँ ब्रह्मा कुमारी में साक्षात्कार पर कुछ भी है नहीं। भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार के लिए गला भी काट देते। मीरा को साक्षात्कार हुआ, उनकी कितनी कितना मान है, वे है भक्ति मार्ग। भक्ति को आधा कल्प चलना ही है, भक्ति को आधा कल्प चलनी ही है, ज्ञान है ही नहीं। वेदों आदि को बहुत मान दे, मान है, कहते हैं वेद तो हमारे प्राण है। अब तुम जानते हो ये वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए। भक्ति का कितना बड़ा विस्तार है, बड़ा झाड़ है, ज्ञान है भी। अभी ज्ञान से तुम कितने शुद्ध होते हो, खुशबूदार बनते हो। ये तुम्हारा बगीचा है, यहाँ कांटा किसी को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ विकार में कोई जाते नहीं। तो कहेंगे इस बगीचे में एक भी कांटा नहीं। कांटा है कल युग में, अभी है पुरुषोत्तम संगम युग, इसमें कांटा कहाँ से आया। अगर कोई कांटा बैठा है तो अपना अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं। कहाँ कांटा बैठा है, क्या कहना चाहता है बाबा कांटा बैठा है। मान लो कि आप किसी को मधुबन में लेके आए हो और वो कांटा है, वो दुख देने वाला काम कर रहा है, दूसरों को गंदी नजर से देख रहा है, गंदा व्यवहार कर रहा है तो अपना नुकसान कर रहा है, और वहां उसको जिसको गंदी नजर से देखा उसको उसका कार्मिक अकाउंट बराबर हुआ। परंतु यदि जिसको गंदी नजर से देखा उससे ही विकारी विचार बन गए तो क्या बना, तो उसका विकर्म बन गया। इसलिए बाबा मतलब कांटे को मधुबन में लाने से रोकते, क्योंकि वहां जाएगा वो चारों तरफ उसी नजर से सबको देखता फिरेगा, और जब वो गंदी नजर से देखता फिरेगा तो उनके अंदर भी प्रभाव तो पड़ता है ना, क्योंकि हर एक को समझ में आता है। तो इसलिए बाबा मना कर रहे हैं कि कांटों को वहां नहीं ला, उसका अपना खाता तो खराब हो ही रहा है, परंतु जिसके साथ उसका हिसाब किताब है वो भी खराब हो रहा। अगर कोई कांटा बैठा है तो अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये इंद्रप्रस्थ है ना, इसमें ज्ञान परियां बैठी हैं। इसमें सब कौन बैठी हैं? ज्ञान परियां। और क्या कर रही हैं? ज्ञान डांस कर रही है। अब उन्होंने परियों को डांस दिखा दिया स्वर्ग में, कि परियां डांस करती हैं। अर्थ कैसे के कैसे बिगड़ते जाते हैं, जिसकी कोई दिक्कत का मतलब देना आप समझ सकते हैं कि कितना बिगड़ जाता है। कि परियां वहां ज्ञान डांस करती हैं, अब ज्ञान शब्द हट जाए तो खाली डांस हो जाता है। तो समझते हैं कि स्वर्ग में जन्नत में हुरे होती है। आप यदि एक बार जन्नत में पहुंच जाते हैं खुदा के चल करके, आप यदि खुदा के जो विरोधी हैं उनको मार देते हैं तो आपको उस मारने में आपको यदि मतलब मौत आ जाती है तो आप जन्नत में जाएंगे, क्योंकि आप खुदा के लिए काम करते हुए इस जिस्म को छोड़ा है तो आप जन्नत में जाएंगे। वहां आपको 72 हुरे मिलेंगे, क्योंकि वो जन्नत में क्या समझते हैं कि वहां परियां हैं, हुरे हैं, सुंदर कन्याएं हैं, एक औरतें हैं, और वो आपको मिलेंगी। अब उनकी नजर तो अपनी ही रहेगी, क्योंकि वो ये नहीं समझ सकते कि वहां पर परियां हैं, ज्ञान परियां हैं, वो ज्ञान दास करेंगे। वहां पुरुष स्त्री का कोई मतलब नहीं है, वहां तो सभी आत्माएं ज्ञान दास करते हैं। मधुबन में जाने में हम सारी पार्वतियां बन जाती, वहां स्त्री पुरुष का कोई चक्कर नहीं, हम सब पार्वती हैं, परंतु स्त्री पुरुष को बिठाया अलग जाता है ताकि मर्यादा बनी रहे। बाकी चाहे कोई भी काटा है, चाहे स्त्री हो उसकी नजर खराब है, उसके विचार खराब है, वो भी काटा है, चाहे वो पुरुष हो तो वो भी काटा है। मुख्य मुख्य के नाम सुखराज परी, नीलम परी आदि आदि पड़े। देव फिर 9 रतन गाए जाते हैं। देव फिर क्या करते हैं? 9 रतन गाए जाते हैं, परंतु ये कौन से ये किसी को भी पता नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो, तुम बच्चों की बुद्धि में अब समझ, चौरासी का चक्र भी अभी, चौरासी का चक्र भी अभी बुद्धि में है, शास्त्रों में तो 84 लाख कह दिया। नीचे नीचे किसी लधे बच्चों को बाप ने समझाया है, तुमने 84 जन्म लिए हैं, अब कमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। कितना सहज है भगवानों वास बच्चों प्रति, माँ ने तुम याद करो। वो अभी तुम बच्चे खुशबूदार फूल बनने के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कांटे नहीं बने जहां सब मीठे मीठे फूल हैं, कांटा नहीं। हाँ माया के तूफान तो आएंगे, माया के तूफान तो आएंगे, माया ऐसी कड़ी है जो झट फंसा देगी, फिर पछताएंगे कि हमने ये क्या किया, हमने ये क्या किया, हमारी तो पूरी कमाई सारी चट हो गई, अब आप एक साल पवित्र रहे, एक साल पवित्र रहने के बाद फिर पतित बन गए। आपने 6 महीने क्रोध नहीं किया, 6 महीने के बाद आपने क्रोध कर दिया। आप कोई भी लालच नहीं करते थे, आज आपने लालच कर दिया। तो आपने जितने समय लालच नहीं किया वो सारा का सारा मामला खत्म हो गया। विकार फिर से आ गया, एक बार विकार आ गया विकार से जल्दी से छोड़ता नहीं, फिर उसको निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती। क्योंकि बाबा की बात को नहीं माना, फिर एक बार गिर गया तो फिर उसे निकलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए शब्द युग क्या है, हमारी तो की कमाई सारी चट हो गई। ये है बगीचा, बगीचे में अच्छे अच्छे फूल भी होते हैं। इस बगीचे में भी कोई तो फर्स्ट क्लास फूल होते हैं, होते जाते हैं। जैसे मुगल गार्डन में अच्छे अच्छे फूल होते हैं। मुगल गार्डन सुना है कभी, देखा है किसी ने मुगल गार्डन? किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं सुना? कहाँ है ये? आपके घर में है ना? बालकनी में तो लगा रखे हैं। आपके दिल्ली में तो मुगल गार्डन है ना? कितनी दूर है आपके मुगल गार्डन? राष्ट्रपति भवन में है ना मुगल गार्डन? आपके घर से जितनी दूर राष्ट्रपति भवन है उतनी दूर है मुगल गार्डन। और अब मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन में जो गार्डन बनाया गया है उसे मुगल गार्डन कहा गया है। अब उसका नाम बदल दिया गया, अब उसको मुगल गार्डन नहीं कहते हैं। अब उसे जो नया नाम दिया है वो मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है? तो अब उसको नाम को चेंज किया। जैसे मुगल गार्डन में अच्छे अच्छे फूल होते हैं और वो फ्री होता है देखने के लिए, परंतु वो खोला जाता है फरवरी मार्च में, मतलब फरवरी मार्च का मौसम होता है, एकदम सारे बगीचा बहुत सुंदर खुला होता है और फ्री होता है, सब कोई भी देखने के लिए जा सकता है, परंतु रिजर्वेशन कराने से, बिना रिजर्वेशन के नहीं कि कोई भी अंदर चला जाए। लिमिटेड लोगों को, आज इतने लोग जाएंगे उतने लोगों को जाने दिया जाए। जैसे मुगल गार्डन में अच्छे अच्छे फूल होते हैं सब जाते हैं देखने, यहाँ तुम्हारे पास कोई देखने तो आएंगे नहीं, तुम्हारे पास कोई देखने नहीं आएगा, वहां जाएंगे देखने के लिए। तुम कांटों को क्या मुंह दिखाएंगे? ध्यान से बात सुन आइए, तुम कांटों को क्या मुंह दिखाएंगे? गायन भी है मूत पलीती कप्पड़ धोए, जो खुद कांटा है खुद विकारों में जाता है, नहीं? तो अब वो क्या मुंह दिखाएंगे? बाबा को जप साहिब सुखमणि, मतलब सिख धर्म के अंदर जो छोटी छोटी पुस्तकें हैं, छोटी छोटी मतलब छोटी छोटी नोटबुक की कॉपी, मतलब बुक समझो, गुटके समझो, और उनका एक का नाम है जप साहिब और दूसरे का नाम है सुखमणि। वो इसके साथ क्या करते हैं, जी लगाते हैं, वो बोलेंगे जप जी साहिब सुखमणि जी, ये दो किताबें। और बाबा कहते जप साहिब को, बाप को याद कर तो तेरे को सुख मिल जाएंगे। उन लाइनों को पढ़ने से कुछ इतना लाभ नहीं होगा। बाबा को जप साहेब सुखमणि आदि सब याद की, ब्रह्मा बाबा को जप जी साहेब और सुखमणि जाती, क्योंकि बहुत छोटी सी होती है और उसे रोज आना पढ़ना होता था, क्योंकि वहां पर प्रभाव था पाकिस्तान के अंदर। अखंड पाठ भी करते थे, वर्ष का था, 8 वर्ष का था तो पटका बांधता था, मतलब बाबा ब्रह्मा बाबा 8 साल के थे तो जैसे गुरुद्वारे में पटका बांधते हैं ऐसे ब्रह्मा बाबा भी सिर पर पटका बांधते थे। रहता ही मंदिर में था, बस रहता मंदिर में था, बस पटका उनकी तरफ बांधते थे। मंदिर का चार सारी हमारे ऊपर थी। अभी समझते हैं भूत पली थी कपड़े धोने का अर्थ क्या, तब पता नहीं था कि मूत पली थी कपड़े धोने का क्या मतलब। महिमा सारी बाबा की है। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, बच्चों को कहते भी हैं अच्छे अच्छे फूल लाओ। बच्चों को बाबा क्या कहते हैं, अच्छे अच्छे फूल लाओ, जो अच्छे अच्छे फूल लाएंगे वो अच्छा फूल माना जाएगा। सभी कहते हैं हम श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो गोया गुलाब के फूल हो गए। बाप कहते हैं अच्छा तुम बच्चों के मुख में गुलाब, अब पुरुषार्थ कर सदा गुलाब बनो। ढेर के ढेर बच्चे हैं, प्रजा तो बहुत बन रही है, प्रजा तो बहुत बन रही है, वहां है ही राजा रानी और प्रजा, राजा रानी और प्रजा। राजा रानी और प्रजा, सतयुग में वजीर होता नहीं। सतयुग में क्या होता है, राजा रानी होती है और प्रजा होता है, बीच में कोई और होता ही नहीं। सतयुग में वजीर होता ही नहीं, क्यों, क्योंकि राजा में ही पावर रहती है सारे काम करने, सारे काम अपने आप, सारे चरित्रवान हैं, सारे काम अपना एक्यूरेट कर रहे हैं, तो कोई गलती कर ही नहीं रहा है। गलती कर रहे हैं तो छोटी मोटी गलती होती है, वो राजा उसको फॉलो कर देता। वजीर आदि से राय लेने की दरकार ही नहीं रहती, नहीं तो राय देने वाला बड़ा हो जाए, नहीं तो राय देने वाला बड़ा हो जाए। वहां भगवान भगवती को राय की दरकार ही नहीं होती, जरूरत ही नहीं रहती। वजीर आदि तब होते हैं जब पतित होते हैं। भारत की ही बात है और कोई खंड नहीं, जहाँ राजाएं राजाओं को माथा टेकते हैं, यहाँ ही दिखाया जाता है। राजाएं राजाओं को माथा टेकते हैं, ये यहाँ ही दिखाया जाता है। ज्ञान मार्ग में पूज्य, अज्ञान मार्ग में पुजारी, ये डबल कार्ड और वो सिंगल कार्ड, वो सिंगल कार्ड। दुनिया में आज सिंगल कार्ड था जब भक्ति शुरू हुई, और वहां पर डबल कार्ड, वे सिंगल कार्ड। भारत जैसा पवित्र खंड कोई है नहीं, पैराडाइज बहिष्ठ था, स्वर्ग जो है वो क्या था, बहिष्ठ था, और तुम उसके लिए ही पढ़ते हो। अभी तुमको फूल बनना है, बागवान भी आया है, माली भी है, और माली नंबरवार होते हैं, माली को क्या कर दिया, नंबरवार भी होते हैं। बच्चे भी समझते हैं ये बगीचा है, इसमें कांटे नहीं, कांटे दुख देते हैं, बाप को किसका दुख नहीं देते, वे ही दुख हरता सुख करता बाप की बच्ची। बाप तो किसी को दुख नहीं देते, वे है ही दुख हरता सुख करता। कितना मीठा बाबा है, कितना मीठा बाबा है। तुम बच्चों को बाप पर लव है, बाप भी बच्चों पर क्या करते हैं, बच्चों को लव करते हैं। ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई है। बाप कहते हैं मैं तुमको प्रैक्टिकल में पढ़ाता हूँ, ये भी पढ़ता है। कौन पढ़ता है? ब्रह्मा बाबा भी पढ़ता है, ये भी पढ़ते हैं। पढ़ कर फिर पढ़ाओ तो और भी कांटों के फूल बने। तुम पढ़ करके औरों को पढ़ाओ तो दूसरे भी कांटे के फूल बनेंगे। खुद तो बन रहे हो, औरों को भी बनाओ। भारत महादानी गाया हुआ है, भारत महादानी गाया हुआ है, क्योंकि अभी तुम बच्चे महादानी बनते हो। अब तुम बच्चे क्या बनते हो? महादानी बनते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का तुम दान करते हो, अविनाशी ज्ञान रत्नों का तुम दान करते हो। बाबा ने समझाया है आत्मा ही रूप बसंत, बाबा भी रूप बसंत है, उनमें सारा ज्ञान है। ज्ञान का सागर है परम पिता परम आत्मा, वे अथॉरिटी है ना। ज्ञान का सागर एक बाप है, इसलिए गाया जाता है सात समुद्र की ऊंचाई करो तो भी घुटने का नाम घुटने वाला नहीं है। और फिर एक सेकंड में बाबा क्या देते हैं हम सबको, एक सेकंड जीवन मुक्ति का भी गायन है कि परमात्मा एक सेकंड में सबको जीवन मुक्ति देते हैं, क्या भी गायन है। तुम्हारे पास कोई शास्त्र आदि नहीं है, वहां कोई पंडित आदि के पास जाएंगे तो समझते हैं ये पंडित बहुत पढ़ा हुआ अथॉरिटी है, इसने सब वेद शास्त्र कंठ किए, फिर संस्कार ले जाते हैं तो छोटे पने से फिर वे अध्ययन कर लेते हैं। तुम संस्कार नहीं ले जाते हो, तुम पढ़ाई की रिजल्ट ले जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई और फिर रिजल्ट निकलेगी और वो पद ले लेगी। ज्ञान थोड़े ले जाएंगे, बच्चों में ज्ञान जाता नहीं। ज्ञान थोड़े ले जाएंगे, जो किसको सुनाएंगे, वहां जाकर सत्संग में कोई ज्ञान नहीं सुना, सब अपनी प्रालत बना के गए। हाँ संस्कार जाएंगे, संस्कार में और ज्ञान में क्या अंतर है? ज्ञान है जानकारी, संस्कार है उसका परिणाम। ये तुम्हारी पढ़ाई है जिसकी प्रारब्ध नई दुनिया में मिलनी है। जिसकी प्रारब्ध नई दुनिया में मिली है, मेहनत यहां करोगे और फल तुमको नई दुनिया में मिलेगा। जिसकी प्रारब्ध नई दुनिया में मिलनी है, तुम बच्चों को बाप ने समझाया है माया भी कोई कम शक्तिवान नहीं है, माया को शक्ति है दुर्गति में ले जाने की। माया माया दुर्गति में ले जाने की, परंतु उनकी महिमा थोड़े ही करेंगे, वे तो दुख देने में शक्तिमान है। बाप सुख देने में शक्तिमान है, इसलिए उनका गायन है। ये भी बाप सुख देने में शक्ति माने, इसलिए बाप सुख देने में शक्ति माने, इसलिए उनका गायन है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुम सुख उठाते हो तो दुख भी उठाते हो। हार और जीत किसकी है इनका भी मालूम नहीं चाहिए, मालूम होना चाहिए। हार और जीत किसकी है इनका भी मालूम होना चाहिए। बाप भी भारत में आते हैं, जयंती भी भारत में मनाते हैं। ये किसी को भी पता नहीं कि हम कौन, ये किसी को भी पता नहीं कि शिव बाबा कब आया, क्या आकर किया, नामो निशान ही गुम कर दिया है। श्री कृष्ण बच्चे का नाम दे दिया है। वास्तव में बिलवेड बाप की महिमा अलग अलग। वास्तव में बिलवेड बाप की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। वो निराकार वेद साकार, श्री कृष्ण की श्री कृष्ण की महिमा है सर्वभूत संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। शिव बाबा की ये महिमा नहीं करेंगे। जिसमें गुण है तो अवगुण भी होंगे, इसलिए बाप की महिमा ही अलग है। बाप को अकाल मूरत कहते हैं ना, हम भी अकाल मूरत हैं। आत्मा को खाल काल खा नहीं सकता, आत्मा अकाल मूर्त का ये तख्त है। हमारा बाबा भी अकाल का मूर्त है, काल ये तख्त है, अकाल मूर्त का ये तख्त है। हमारा बाबा भी अकाल मूरत है। काल शरीर को ही खाते हैं, यहाँ अकाल मूरत को बुलाते हैं। सतयुग में नहीं बुलाएंगे, क्यों? क्योंकि वहां तो सुख ही सुख है। इसलिए गाते भी हैं, दुख में सिमर सब करे, सुख में करे न सो। काल मतलब शरीर को खाता है ना, आत्मा को खाता नहीं है ना, इसलिए गाते भी है। दुख में से मैं सब करे, सुख में करे ना कोई। अभी रावण राज्य में कितना दुख है। बाप को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर वहां आधा कल्प कोई पुकारते ही नहीं। जैसे लौकिक बाप बच्चों को श्रृंगार कर वर्षा दे, खुद वानप्रस्थ अवस्था लेते हैं, सब कुछ बच्चों को देकर कहेंगे अभी हम सब करने जाते हैं, कुछ खाने के लिए देते रहना। ये बाबा तो ऐसे नहीं कहेंगे ना, ये तो कहते हैं नीचे नीचे बच्चों, हम तुमको विश्व की बादशाही देकर वानप्रस्थ में चले जाएंगे। हम थोड़े ही कहेंगे बादशाही देकर वानप्रस्थ में चले जाएंगे। हम थोड़े ही कहेंगे खाने के लिए भेजना, तो मैं तो नहीं कहूंगा खाने के लिए भेजो। लौकिक बच्चों को तो फर्ज है बाप की संभाल करना, नहीं नहीं तो खाएंगे कैसे? ये बाप तो कहेंगे है? मैं निष्काम सेवाधारी। मनुष्य कोई निष्काम हो ना सके, भूख मर जाएंगे, हम थोड़े भूख मरेंगे, हम तो अभोक्ता हैं। तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देकर हम जाए विश्राम करते हैं, फिर हमारा पाठ बंद। बाबा का पाठ क्या हो जाता है? बंद हो जाता। जो राज बाप बैठ समझाते हैं वास्तव में तुम्हारा पाठ सबसे जागती है, तो इजाफा भी तुमको मिलना चाहिए। इंसेंटिव बोलते हैं अंग्रेजी में इजाफा। मैं आराम करता हूँ तो तुम फिर ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के मालिक बन जाते हैं। तुम्हारा नाम बड़ा होता है, ये ड्रामा का राज भी तुम जानते हो। तुम हो ज्ञान के फूल, दुनिया में एक भी नहीं, रात दिन का फर्क है। वे रात में और तुम दिन में जाते हो। आजकल देखो वन उत्सव करते रहते वनोत्सव मनाते ना, आप भगवान मनुष्यों को वन उत्सव कर रहे हैं, भगवान मनुष्यों का वन उत्सव मना रहे हैं। आप देखो कैसी कमाल करते हैं, जो मनुष्य को देवता, रंग को राजा बना देते हैं। अभी बेहद के बाद से तुम सौदा कर लेने के लिए आए हो। सौदा लेने आए हो, कहते हो बाबा हमको रंग से राव बना दो, राजा बना दो। ये तो आज बाबा बागवान बना बैठा है ना। दुनिया में वन उत्सव में पेड़ लगाते हैं ताकि हरियाली हो, पेड़ हो, ठीक है नहीं? तो बाबा बागवान है, आज हम सबका देना कलम लगा रहा है। हमारी कलम कैसे लग रही है ये देख लो। उनको तुम कैसे भी हो दुख हर्ता सुख करता, दुख हर्ता सुख करता। इन जैसा दान कोई होता ही नहीं, किसी को दुखी से सुखी बना देना, इससे बड़ा दान कोई होता ही नहीं, कांटे से फूल बना देना। इन जैसा दान कोई होता ही नहीं, वो सुख देने वाला। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भी मैं तुमको देता हूँ, ये ड्रामा में नूड है, ये ड्रामा में नूड है। साक्षात्कार आदि की अब बाप बैठ सब जाते हैं। साक्षात्कार के लिए मैं क्या करता हूँ, आगे चलकर समझाते रहेंगे। आखिरी अंत में तुम नंबरवार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे और नंबर वार कर्मा की अवस्था को पाएंगे, जहां वो आते हैं ये सब ड्रामा में नूड है, फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता है। बाप को याद करो, बरोबर ये महाभारत लड़ाई भी है, सब खत्म हो जाएंगे, बाकी भारतवासी ही रहेंगे, सब खत्म हो जाएंगे। फिर तुम विश्व पर राज्य करते हो। अभी बाप तुमको पढ़ाने आए हैं, वही ज्ञान का सागर है। ये खेल यही खेल है, इसमें मूझने की बात नहीं। माया तूफान में लाएगी, बाप समझाते हैं इनसे जरूर नहीं। बहुत गंदे भाव से वे भी तब बहुत गंदे गंदे संकल्प आएंगे। वे भी तब जब वे भी तब जब बाबा की गोद लेंगे। बाबा की गोद लेने का मतलब होता है बाबा की श्रीमत पर चलना। जब तक गोद ही नहीं ली है तो माया इतना नहीं लड़ेगी। गोद लेने के लिए बार बार दिया खर्च कर हुई जी। नहीं, माया नहीं आ सकती। हम गोद में गोद ही नहीं लेंगे तो माया इतना नहीं लड़ेगी। गोद लेने के बाद ही तूफान आता है। अभी देखो बाबा की श्रीमत पर चल ही नहीं रहा तो माया उससे लड़ेगी। वो तो माया का कहना मान रहा है ना। जब हम बाबा की श्रीमत पर चलकर माया का कहना मानने के लिए इनकार करते हैं तो हमारे में परिवर्तन। गोद भी संभाल कर लेनी चाहिए। कमजोर है तो फिर प्रजा में आ जाएंगे। राजाई पद पाना तो होंगे राजाई पद पाना तो अच्छा है, नहीं तो दास दासियां जाकर राजाई पद पाना तो अच्छा है ना, नहीं तो दास दासियां बनना पड़ेगा। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। साधना के लिए मुख्य साथ नंबर एक रूप बसंत पर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वे दूसरों को भी पढ़ानी है। किसी भी बात में मूझना व डरना नहीं है, अपनी संभाल करनी है। अपने आपसे पूछना है मैं किस प्रकार का फूल, मेरे में कोई बदबू तो नहीं है। वरदान दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप उद्धव। दिल शिकस्त होना किसी भी संस्कार में व प्रकृति में परमानेंट। दिल सिका सोना किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना, व्यक्ति व वैभवों की तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत, ये कलयुग का पहाड़ है, इसको उठाने के लिए हम सबको दृढ़ संकल्प की अंगुली देकर सदा काल के लिए समाप्त करो अर्थात विजयी बने। विजय हमारे गले की माला है, सदा इस स्मृति से समर्थ की स्वरूप बनी रहती। सदा इसी स्मृति से समर्थ की स्वरूप बनो, यही स्नेह कार्य करना। जैसे साकार बाप ने पृथ्वी को स्तंभ बनाकर दृढ़ कर दिया, जैसे साकार बापा ने बाप ने पृथ्वी को सब बनाकर दिखाया, ऐसे फॉलो फादर कर सर्व गुणों के स्तंभ बनो, सारे गुणों को अपने जीवन में धारण करो। स्लोगन साधन सेवाओं के लिए है, आरामदायक। स्लोगन है साधन सेवाओं के लिए, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। सेवा के लिए सभी साधनों का यूज करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। अव्यक्त इशारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो, जैसे एटम बम एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश वंश फैल जाते। उसके अंश फैल जाते हैं। बम फटता है ना, तो वे एटम बम है और ये हमारा क्या है आत्मिक बम, वो है एटम बम और याद क्या जाता है आत्मिक बम। इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा और सहज ही प्रजा का प्रजा बढ़ा करेगा। इसलिए संगठित रूप में आत्मिक स्वरूप के अभ्यास को बढ़ाओ, समृद्धि स्वरूप के विभिन्न रूप को समृद्धि स्वरूप बनो तो वायुमंडल पावरफुल बन जाए, क्योंकि आप बाबा की याद में रहेंगे, आपके कर्मों को देखेंगे तो अपने आपको समझेंगे कि हम कितना श्रेष्ठ भाग्यशाली। अच्छा ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी स्तरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम ओम।